ओम शांति। आज हम रविवार को जो चली थी अव्यक्त मुरली, उसका रिवीजन करेंगे। जो सुबह रविवार को चली थी, जो मुरली का टाइटल था स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति, सभी ने सुनी है, पढ़ी है ना। तो उसी मुरली का रिवीजन करना है। तो इस मुरली में बाबा ने खास जो जिस्मानी सेना है और रूहानी सेना का माना वर्णन किया है, तुलना किए हैं। और हम जो अभी संगम युग पर रूहानी सेना जो शस्त्र धारण करते हैं, जो बाबा के रतन धारण करते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र जो बने शास्त्र में वहां शस्त्र दिखाया गया है। तो बाबा ने इसमें पांडवों को भी याद किया इस मुरली में, और देवियों के हाथ में जो भी शस्त्र होते उसको भी याद किया है। और अभी हम जैसे वर्तमान दुनिया देखे, अभी जो कलयुग कहते हैं, तो इसमें अनेक इन्वेंशन भी हो रही है। ऐसे अनेक तरह के बम ब्रह्मास्त्र जैसे तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस मुरली में वर्णन है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो बाप दादा रूहानी कमांडर बन, जो आर्मी का कमांडर होता है ना, मुख्य सेनापति, तो वो अपने रूहानी सेनाओं को, स्पिरिचुअल आर्मी को देख रहे थे। तो देखने के बाद उनमें कौन कौन सी शक्तियां भरी है, कौन कौन से शस्त्र धारण किए हैं, वो भी चेक कर रहे थे। और कौन कौन से महावीर है, जैसे महाभारत में भी जो युद्ध महाभारत युद्ध का वर्णन है, उसमें भी मतलब दो सेना थी, कौरव सेना पांडव सेना, हर एक के सेनापति होते हैं ना। जैसे कौरव का सेनापति भीष्म को बनाया गया था, पितामह भीष्म, और जो पांडव का सेनापति कौन था, नहीं सेनापति जो कमांड देने वाला, वो था प्रद्युम्न, दृष्टद्युम्न, जो उसकी कहानी है कि वो यज्ञ से पैदा हुआ था और जन्म से ही उसके शस्त्र और शास्त्र का पूरा ज्ञान था। तो उसको वो योग्यता देख के उसको सेनापति बनाया गया था पांडवों का। तो सभी जैसे उस सेना में जैसे सभी शस्त्रधारी होते, उस योग्यता के आधार पर मतलब नियोजन करते, मना योग्य देख के। तो बाबा भी यहाँ कौन कौन से महावीर है वो चेक कर रहे थे इस मुरली में, कौन से शस्त्र धारण किए हैं। जैसे उन जो महाभारत में भी जो वर्णन है कि हर एक के पास एक से एक बढ़कर शस्त्र थे। जैसे भीष्म पितामह के पास इतने शस्त्र थे कि वो बहुत बहुत माना एक भी युद्ध हार नहीं सकता, ऐसा उसे उन्हें वरदान था। ब्रह्मास्त्र से लेके जो भी जो पंचतत्व के अस्त्र होते हैं, वरुण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, आकाश अस्त्र, सभी से वो सुसज्ज थे। तो बाबा भी इस मुरली में हमारे अंदर कौन से शस्त्र धारण किए वो चेक कर रहे थे। तो जैसे बाबा ने फिर जिस्मानी जो मिलिट्री है, जिस्मानी जो सेना है, जैसे वर्तमान की सेना, इसमें भी जैसे इन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए अस्त्र शस्त्र निर्माण कर रहे हैं। तो उसका जैसे अभी लेटेस्ट देखे तो ऐसी मिसाइल्स तैयार कर दी है उन्होंने कि कितने भी माइल पर टारगेट लगा सकते और एक ही जगह बैठे। बाबा ने मुरली में वर्णन किया है कि आजकल की जो जिस्मानी सेना है वह एक स्थान पर बैठे ही दूर जाना नहीं पड़ता, वो टारगेट लगा सकते हैं। तो ऐसे बाबा ने फिर बच्चों को कहा कि ऐसे हम बच्चों में ये जो संकल्प शक्ति का पावर आई है कि एक स्थान पर बैठे भी हम विश्व की कोई भी कोने में आत्मा दुखी है या अशांति है, अशांत है या कोई भी कारण से कोई विघ्नग्रस्त है, तो उसको टच कर सकते हैं। कोई भी परेशानी में वो उसको बाबा का परिचय या उसको ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं या फिर इस स्थान में आपको जाने के लिए प्रेरित कर सकते, इतनी पावर हमारे अंदर आई है। तो ये बाबा चेक कर रहे थे। तो साइंस के साधन और साइलेंस के साधन, इसकी तुलना बाबा ने की है। तो जैसे जिस्मानी मिलिट्री में भी अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र माना जो मंत्रों के द्वारा, जैसे महाभारत में मंत्रों के द्वारा दागे जाते थे, जैसे हाथ हाथ में मंत्र उच्चारण करते आ जाते थे। अस्त्र माना दूर फेंके जाने वाले या दूर चलाने वाले, जैसे सुदर्शन चक्र है श्री कृष्ण के हाथ में, सुदर्शन चक्र, तो वो संकल्प शक्ति से चलता था। और कुछ है दृष्टि से चलते हैं, कुछ उनको अस्त्र कहा जाता है, दृष्टि से, वाणी से और संकल्प शक्ति से, तो इनको अस्त्र कहा जाता है। और शस्त्र माना जो तलवार है, मुद्गर है, गदा है, ये शस्त्र हो गया जो हाथ से चलाए जाते हैं। तो ये भी हमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान बाबा दे रहे हैं। तो जितना हम ज्ञान के पॉइंट्स धारण करते यही हमारे अस्त्र शस्त्र बनते हैं। तो अभी जैसे दुनिया में होड़ लगी है अस्त्र शस्त्र बनाने की, कि इतना रिफाइन बना रहे हैं कि कम समय में, कम एनर्जी में और जहां फिक्स टारगेट है वहां लगा सकते हैं। तो भारत में भी जो मिलिट्री ने बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, जो अंतरिक्ष में बहुत ना दूसरे देश में टारगेट कर सकती है, इतना पावरफुल बनाई है। और अनेक जैसे त्रिशूल, त्रिशूल मिसाइल है, नाग मिसाइल है, प्रहार मिसाइल, ये मिसाइल नाम दिया। और ये सब महाभारत में इन अस्त्रों का नाम है, महाभारत से ही लिया हुआ है। त्रिशूल है, नाग मिसाइल, नागास्त्र जो होते ना, नागास्त्र अगर कोई धनुर्धर छोड़ता है तो उसको तोड़ने के लिए एक गरुड़ अस्त्र होता है, कोई अग्नि अस्त्र चलाया तो उसको तोड़ने के लिए होता है जल अस्त्र, वरुण अस्त्र। तो ऐसे एक दो को काटने के लिए अस्त्र शस्त्र। और इनका जो स्टडी हुई है कि जो अस्त्र शस्त्र जो निर्माण की प्रक्रिया पूरे गीता ज्ञान से ही निकली है। और जो भी एटम बॉम्ब्स भी बने हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब सब, क्योंकि गीता में रिसर्च किया, गीता के जो अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ और वहां के वैज्ञानिकों ने इसकी स्टडी की, और स्टडी करते करते उनके संकल्प जागृत हुए और उन्होंने फिर ऐसे अस्त्रों का निर्माण किया। जैसे ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक माना जाता है, पावरफुल, जो पूरे ब्रह्मांड को ही हिला देता है। तो ब्रह्म शिरा अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, ऐसे अनेक अस्त्र जो वर्णन है महाभारत में। तो ब्रह्मास्त्र को देख के ही उन्होंने ये एटम बम या जो इसका एग्जाम्पल कहाँ किया था, नागासाकी हिरोशिमा में। तो कितना उसका मतलब अभी तक भी प्रभाव है बोलते हैं कि वहां जीव जंतु और वनस्पति कुछ वर्षों के लिए उगते ही नहीं है या पैदा नहीं होती। तो ऐसे ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन है, ब्रह्मास्त्र का वर्णन शास्त्रों में है कि ये अगर चला दिए तो वहां वनस्पति जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र, फिर जैसे त्रिदेव है, हर एक देवता के पास एक विशेष अस्त्र माना जाता है, जो जिसकी उस जिनकी आराधना करते हैं उनको वो शस्त्र मिलते हैं। तो त्रिदेव माना जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर शिव जवान थे, तो ब्रह्मा के पास कौन सा अस्त्र है, लेकिन चलाते नहीं, वो बनाने के बनाते हैं लेकिन चलाते नहीं, हाँ वरदान दे देते। और विष्णु के पास होता है सुदर्शन चक्र और नारायण अस्त्र, ये दो विशेष है उनके। और जो भी इनकी आराधना करते हैं, जैसे देवासुर संग्राम में भी जिन्होंने भी राक्षसों ने भी तपस्या की तो उनको भी दे देते तो उनको भी ये तपस्या का फल अस्त्र मिल जाते थे। और शंकर, माना शंकर के पास कौन सा अस्त्र है? त्रिशूल, त्रिशूल अस्त्र है। और त्रिशूल से एक पावरफुल है, वो गुप्त है, दिखाया नहीं गया है, वो है पाशुपतास्त्र। हाँ पाशुपतास्त्र, ये जैसे हाँ अर्जुन को दिया था, अर्जुन ने भी तपस्या किया था तो वो उसे प्राप्त हुआ था। लेकिन अर्जुन ने महाभारत में यूज नहीं किया, अगर यूज होता तो सृष्टि खत्म हो जाती। तो ये शिव के लिए है और वो अभी लास्ट में चलाते जो सृष्टि परिवर्तन करना होता है। तो ऐसे अनेक शस्त्रों शास्त्रों का वर्णन शास्त्र में भी है, तो अभी के आधुनिक युग में भी है। तो आधुनिक युग में भी एक देश दूसरे देश की गोड़ में ये अस्त्र शास्त्र बना रहे हैं। तो बाबा भी अभी मुरली में हमें रोज सुसज्जित कर रहे हैं शस्त्रों से ना। हर मुरली में एक एक शस्त्र किस लिए देते हैं? माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो माया तो ऐसी है नहीं ना, पंच कोई शारीरिक तो है नहीं, सूक्ष्म है माया। तो बाबा ने कहा कि सुदर्शन चक्र से माया का गला काटो। तो सुदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन, और इसमें हम अभ्यास करते हैं पांच स्वरूपों का, अनादि आदि मध्य और पूज्य, मध्य ब्राह्मण और फरिश्ता। तो पांच स्वरूप का अभ्यास करते तो माया का गला कट जाता है। माना हम स्मृति में लाते हैं कि हम कौन थे, कैसे थे, अभी क्या बनना है, कौन हमारे साथ है। तो ये स्मृति ही हमें विजय दिलाती है। तो स्वदर्शन चक्र से माया का गला कटता है, और शास्त्रों में दिया है सुदर्शन चक्र। तो बाबा फिर ऐसे अनेक पॉइंट्स हमें देकर नॉलेज की शक्ति से सुसज्जित कर रहे हैं, सशस्त्र बना रहे हैं, सशक्त सशस्त्रधारी। तो बाबा फिर इसमें जैसे जिस्मानी मिलिट्री में होती है तो उसमें जो अच्छे योगदान देते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं, कीर्ति का मान करते हैं, तो उन्हें पदक दिया जाता है। जैसे वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, स्वर्य चक्र, कीर्ति चक्र। तो ऐसे भी बाप दादा भी फिर देख रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे विजय चक्र के अधिकारी को नहीं। तो जो सुदर्शन चक्र चलाते हैं वही विजय चक्र के अधिकारी बनते हैं। तो उसका आधार ये सुदर्शन चक्र, विजय चक्र प्राप्त करने का आधार सुदर्शन चक्र। तो बाप दादा इस मुरली में विशेष यही देख रहे हैं कि सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने एक जैसी पढ़ाई दे रहे बाबा, लेकिन नंबरवार क्यों बनते हैं? सभी की रोज एक ही मुरली होती है सभी के लिए, चाहे यहां बैठे चाहे अमेरिका हो, एक ही मुरली होगी। लेकिन पहले कुछ सालों पहले नहीं थी, 90 के दशक में तो थोड़ा लेट मिलती थी सबको, लेकिन अभी सबको कंपलसरी वही मुरली मिल जाती है। तो एक ही पढ़ाई होते हुए भी ऐसे नंबरवार क्यों बन जाते हैं? और पढ़ाने वाला भी एक, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई एक है तो हम नंबरवार क्यों बनते हैं? तो बाबा ने कहा कि हम धारण करने में नंबरवार बन जाते हैं। पॉइंट जो पॉइंट बाबा ने कहा धारण करना है, लेकिन वो पॉइंट तक ही रहते हैं, स्वरूप नहीं बनते हैं। नॉलेज की रीति से सभी धारण कर लेते हैं, लेकिन स्वरूप की रीति से धारण नहीं करते, इसलिए पॉइंट स्वरूप नहीं बनते। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो भी मुरली होती है तो उनमें से रोज जो वरदान है या स्लोगन है या जो पॉइंट्स है उनको शस्त्र रूप में यूज करो। तो बाबा ने एग्जांपल दिया था ड्रामा की पॉइंट का। तो ड्रामा की पॉइंट ऐसी पॉइंट है जो सर्व शक्तिशाली शस्त्र के रूप में यूज कर सकते हैं। शक्तिशाली शस्त्र जैसे जिसको ड्रामा का ज्ञान हो गया तो वो राज को जानने के कारण नाराज नहीं हो सकता और सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में रहेगा। कोई भी परिस्थिति आए ड्रामा की पॉइंट ऐसी हमें शक्ति देती है कि हम इसमें कोई भी परिस्थिति कितनी भी परिस्थिति रही उसको सहज पार कर सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट बाबा ने याद दिलाई कि सभी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं, वो पॉइंट काम नहीं करती। कहते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन जब बाबा देखते हैं तो बाबा को तरस आता है कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान और अभी माया से हार जाते हैं। तो बाबा बोलते ऐसे अपने आप में सशक्त नहीं बने हैं। फिर बाबा कहते कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर जोड़ तोड़ वाली स्थिति हो जाती है और कभी योग जुड़ता कभी टूटता, कभी परिस्थिति में हारते कभी विजय होते, तो इससे एकरस स्थिति नहीं बन पाती। और इसमें बाबा ने उदाहरण दिया कोई अगर धागा टूट जाता है, जोड़ तो सकते हैं धागे को लेकिन गांठ लग जाती, तो गांठ वाला मतलब गांठ लगने के कारण वो कमजोर ही रहता है। तो उसके ऊपर बाबा ने भी कहा कि ये ऐसे एकरस स्थिति होनी चाहिए। जैसे शुरू से बाबा ने फिर दूसरा इधर उदाहरण दिया था कि किसी किसी की जो जन्म पत्री है जन्म से ही कोरा कागज है, माना कोई दाग नहीं है। अगर कोई के जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो फिर दाग लग जाता है, फिर वो मिटाते हैं, लेकिन वो क्लियर माना कागज नहीं होता। तो इस प्रकार बाबा ने ये दो उदाहरण दिए कि एकरस स्थिति नहीं होती, विघ्न आते हैं और उसको फिर विघ्न हटाते हैं। बाबा ने कहा कि सदा निर्विघ्न बने रहो। तो ऐसे अनेक जो पॉइंट हैं हम शस्त्र के रूप में यूज करते हैं। बाबा ने फिर कहा था कि जो सात दिन का कोर्स है 7 डेज कोर्स, तो ये हर जो पाठ है इसको शस्त्र के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो और खुद ही बाबा ने कहा कि इसका रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, हमने तो कोर्स कर लिया लेकिन अभी फिर से रिवाइज करो अपने आप को। बाबा ने कहा कि एक कोई भी एक पॉइंट लो और उसको कितनी शक्ति है उस पॉइंट में और इस शक्ति से क्या हो सकता है, तो हर पॉइंट की शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ और हर लेसन को भी रिवाइज करो और अपने इस ज्ञान मार्ग में शस्त्र के रूप में यूज करो, ये दिया। और जो दूसरी मुरली जो चली थी संडे को शाम को डायमंड हॉल में, उसमें भी बाबा ने क्या कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना है। तो ये मुरली सिमिलरली है कि इसमें भी नॉलेज का अथॉरिटी अपने को लानी है। तो नॉलेज सभी को तो प्राप्त है लेकिन वो अथॉरिटी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हर एक की धारणा की शक्ति कम ज्यादा है, लेकिन पढ़ाई तो एक ही है, लेकिन हरेक की शक्ति के अनुसार ही ये होता है। तो वो मुरली में बाबा ने बोला कि अथॉरिटी देने वाला कौन है, सब भगवान है, और उसकी अथॉरिटी बनना ये हमारे भाग्य की बात है। तो हर पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। फिर बाबा ने कहा था मुरली में कि यूथ ग्रुप भी आया था वहां, जिससे शायद विदेश का यूथ ग्रुप हो सकता है। उस समय ये 85 की मुरली चली, तो उनको कहा कि 10-12 साल हुए तो भी अभी मतलब यूथ यूथ ही हो, माना नए नए हैं। तो उस समय बाबा ने कहा था कि उसमें बाबा ने वर्णन किया था कि संगमयुगी यूथ और कलयुगी यूथ का कंट्रास्ट बाबा ने बताया था कि कलयुगी यूथ है तो तोड़फोड़ करते हैं, और संगमयुगी युग जो है यूथ है वो तो एकदम शांत स्वरूप है। तो अभी भी जो लेटेस्ट का वर्तमान समय का जो चल रहा है, दिल्ली में यूथ है, दिल्ली के स्टूडेंट है, बहुत हंगामा कर रहे हैं वहां कि बस को जला देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तो ऐसे यूथ नहीं है, हम तो विश्व कल्याणकारी यूथ है। हाँ, उन यूथ से गवर्नमेंट भी डरती है, क्योंकि उनमें शक्ति सोच भी शक्तिशाली होती है और फोर्स भी होता है, जोश भी होता है। तो वो यूथ से गवर्नमेंट भी डरती है कि कुछ माना नुकसान बहुत पहुंचाते हैं इसलिए। और अभी के जो बाबा के बच्चे यूथ है, ये विश्व कल्याण का प्लान सोचने वाले हैं और नई दुनिया की रचना के प्लान सोचने वाले हैं। तो ये कांस्टेंस बाबा ने बताया यूथ का। फिर बाबा ने कहा कि जो भी नॉलेज की पॉइंट्स हैं उनको शस्त्र के रूप में यूज करना है और अपने आप को पावरफुल बनाना है। फिर और हाँ, कोर्स का फोर्स, तो जिन्होंने कोर्स अच्छी रीति किया है वो उस रीति से फोर्स से कोर्स करा सकते हैं। तो सभी बाबा ने पूछा कि सभी कोर्स कराने में होशियार है तो अगर किसी को भी बोले तो कोर्स करा सकते हैं, भाषण भी करा सकते हैं, बाबा से भी होशियार है भाषण कराने में। लेकिन बाबा कहते कि भाषण तो करा सकते हैं, लेकिन अभी भाषणा देना है, माना वो उस रीति से कोर्स कराना है, क्योंकि हम जो पालना देंगे वही दूसरों को पालना देंगे। तो वो अभी हमें ऐसी तैयार करनी है। फिर बाबा ने कहा था कि जो लास्ट आने वाले हैं उनको समय का लिफ्ट है। हाँ, साधनों की तो गिफ्ट ही है, तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो पहले जो बच्चों ने मेहनत की, पहले माना मेहनत की मतलब जैसे अभी हम आए तो मक्खन खाने के समय आए ना, तैयार बना बनाया है, लेकिन पहले के आत्माओं ने कितना मेहनत किया यज्ञ को चलाने के लिए। और जैसे अभी बना बनाया मिल जाता है, पहले प्रदर्शनी बनाने में कितना टाइम लगा, बाबा एक एक संदेशी को भेजते थे कि क्या बाबा से पूछ के आओ, चित्र कैसे बनाना है, क्या करेक्शन करना है, एक एक इतना मेहनत किया। और सभी होमवर्क लेते थे कि प्रदर्शनी कैसे बनाए, और अभी कितने विंग है, 19 विंग है, तो 19 विंग की अलग अलग प्रदर्शनी है, माना इतना हरेक विंग्स ने अपनी अपनी प्रदर्शनी इन्वेंशन कर ली है, और अभी सहज समझा सकते हैं हम भी, माना सहज ज्ञान हो गया है, पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ी हरेक को, और अभी सहज बने बनाए हैं। तो बाबा भी बोलते कि अभी जो भी आए, अभी मक्खन खाने के समय आए, तो सबको ये ड्रामा की लिफ्ट है, समय की भी लिफ्ट है। तो इस प्रकार बाबा ने जो लास्ट आने वाले हैं उनको भी याद किया। हाँ, वही जन्म पत्रिका कागज किसी किसी का साफ है, उसके ऊपर वो पॉइंट थी। और बाबा ने कहा था कुछ पॉइंट्स, हाँ बाबा ने वो उसका कहा था, एक एक पॉइंट में कितनी शक्ति है उसका वर्कशॉप करो, कि जैसे एक कोई कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाती है, तो उसको हम कितना धारण करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि कोई बिजनेस में ऐसा कुछ घाटा हो गया, समझो अचानक कुछ गवर्नमेंट के कारण या कुछ ऐसे, तो फिर उसमें हम कौन सी शक्ति यूज करेंगे? हाँ, तो इसमें आप अपने तरफ से ले सकते, ये मेरा पार्ट है, या मैंने किसको धोखा दिया था, या फिर ड्रामा में ऐसा होना था। तो इस प्रकार से हम अपने इस उन परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। तो यही बाबा ने कहा कि अपने परिस्थितियों को पर विजय प्राप्त करना ही शस्त्र चलाना है और विजय प्राप्त करना है। जैसे कोई दुनिया में कोई आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जैसे भूकंप हो गया कई जगह और इतने जान माल की हानि हो गई, तो एक न्यूज सुना हमने, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है उस न्यूज सुनने में, वो हमने कौन सी पॉइंट यूज किया वहां, तो उस समय हमें कुछ उन कुछ आत्माओं को सकाश भी देना होता है, उनके जो परिवार सब दुख में होता है तो उनमें सकाश के द्वारा उन्हें सहन शक्ति प्रदान करना होता है। तो ये बाबा ने मुरलियों में कहा है कि हर आत्माओं में शक्ति भरना है। तो ऐसे कोई भी परिस्थिति आई, जैसे दादी जी अभी कोई समाचार ऐसा मिलता है कि दादी जी अभी रायपुर जाने वाली है, तो वहां वो तो प्रोग्राम है, उन्होंने अरेंज किया, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वहां हम जाके सकाश दें, क्योंकि ये यज्ञ की स्थापना हो रही ना, तो स्थापना हम स्थापन करने वाले बाबा के बच्चे, तो स्थापना के हरेक का संकल्प स्थापना में लगना चाहिए, कि वहां जो भी आत्माएं आएंगी, नई आत्माएं आएंगी, उनको हमारा योगदान मिलना चाहिए, वो भी बाबा के बच्चे बन जाना चाहिए, और हमारे इस रूहानी मिलिट्री में वो भी सैनिक बन जाए। तो ऐसी शुभकामना हमें देनी होती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञान को अनेक रीति से यूज कर सकते हैं। लास्ट वाले तो सब माखन खाने के समय आ गए हैं। तो इस प्रकार बाबा ने इस मुरली में सभी बच्चों को शस्त्रधारी बनने के लिए प्रेरणा दी है। तो पॉइंट को शक्ति कैसे बनाए, तो पॉइंट को शक्ति बनाने के लिए जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कुछ अस्त्र प्राप्त करना है, तो उस देवता को वो तपस्या करते थे, तपस्या करने से वो प्रसन्न हो जाते थे और वो वर मांगना को कहते थे। हाँ, तो वो मांगते थे अपने, और उसको वर भी मिल जाता, वरदान मिल जाता था। तो यहां भी हमें एकांत में ऐसे कोई भी पॉइंट लेना है और वो उस पर मनन चिंतन करना है, और मनन चिंतन करते करते हमें अनेक ऐसे संकल्प टच होते हैं, और वो जो पॉइंट है तो पॉइंट को हम शक्तिशाली रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ज्ञान सूर्य हूँ, एक पॉइंट ले लो कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो ज्ञान सूर्य माना पहले स्थूल सूर्य को याद करना है कि स्थूल सूर्य क्या करता है, उष्णता देता है, तो उष्णता देने से क्या होता है, सारी सृष्टि चलती है, उससे जीव जंतु होते कुछ वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ जीव जंतु तैयार भी होते हैं। हाँ, तो ये स्थूल सूर्य का कार्य है जो बारिश देना है। फिर मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य माना स्वयं ज्ञान सूर्य कौन है, शिव बाबा है, तो ज्ञान सूर्य से मुझे शक्तियां मिल रही हैं और मैं भी मास्टर उस सूर्य के समान, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समान सारे विश्व में रोशनी फैला रहा हूं, और सारे विश्व में जो भी माया के जो कीटाणु है जीवाणु है वो नष्ट हो रहे हैं और इससे सबको रोशनी मिल रही है। तो ऐसे एक एक पॉइंट पर विचार करने से फिर वो शक्ति स्वरूप बनता है। और जैसे कोई भी पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर ऐसे उस पे उसके गुहिया रहस्य में जाना होता है तो फिर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स हम ले सकते हैं और एकांत में ही इसका वर्णन चिंतन मनन करके ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। और बाबा ने जो मुरली में याद किया था देवियों के जो हाथ में जो शस्त्र दिखाए हैं, तो देवियों के हाथ में कौन से शस्त्र होते हैं, तलवार, त्रिशूल, धनुष बाण, कमल फूल भी होता है, शंख भी होता है, रस्सा भी होता है। तो ऐसे अनेक शस्त्र होते हैं। तो तलवार माना ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की तलवार से हम कोई भी ज्ञान की तलवार से कोई भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, माया का गला काट सकते हैं। फिर एक रस्सा दिखाते हैं, रस्सा माना पास, माना बंधन जो होता है बंधन से छूटने के लिए है। और कमल फूल तो ग्रस्त जीवन में पवित्रता की निशानी, न्यारा पैरा बनने की निशानी होती है। और त्रिशूल कोई भी परिस्थिति है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और खड़क भी दिखाते हैं और कटियार भी होता है, कटियार तो काली के हाथ में दिखाते हैं जो गला काटते। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि देवियों के हाथ में शस्त्र है। तो ये यादगार कहाँ की है, संगम योग की यादगार है। तो अभी हमने सब ये शस्त्र धारण किए थे, ज्ञान के शस्त्र, वही भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते हैं। तो ये शास्त्र बनाने वाले जो हैं यही के तो उसे वैसे दिखाया गया कि व्यास मुनि जो थे जिन्होंने द्वापर युग में रचना की, तो उनको ऐसे तीनों को उन्होंने जैसे संगम युग, सतयुग और कलयुग, ये तीनों का मिक्स किया हुआ है। तो व्यास ऋषि जो गाए जाते हैं, जिनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने फिर उनको इस समय का पूरा साक्षात्कार हुआ था और उन्होंने फिर रचना की थी, रचना करने के लिए खुद नहीं किए थे, वो गणेश को आह्वान किया था। तो गणेश ने जो शास्त्र लिखे थे ऐसा वर्णन है, और उन्होंने ये संगम युग का वर्णन वहां किया था द्वापर युग में, और वो शास्त्रों से हम अभी तक पढ़ते आए ना भक्ति मार्ग में, क्या किया शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही हम भगवान को याद करते हैं। तो अभी भक्ति का फल फिर वही ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये चक्र सदैव चलता है, और इसको ही सुदर्शन चक्र भी कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी अव्यक्त मुरली, तो बाबा ने याद प्यार में दिया था ऐसे छत्रधारी, और सुदर्शन चक्र द्वारा विजय चक्र प्राप्त करने वाले, और सदा एक ड्रामा की पॉइंट को धारण कर सदा एक रस अचल अडोल रहने वाले, सदा निर्विघ्न रहने वाले, ज्ञान की पॉइंट्स को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले बाबा ने फिर ऐसे बच्चों को याद प्यार दिया था। अच्छा, ओम शांति।